ऊर्जा बढ़ रही है। अब हाथ को सर पे रखिए, सर ठंडा हो जाएगा, वो वाइब्रेशन सर में जा रहे, सर ठंडा हो रहा है। चेहरे पे फिराइए, ब्रह्मा कुमारी बहने कहती है कपड़े सफेद, जेब है खाली, पर चेहरे पे है रूहानी लाली, और हम बन रहे हैं विश्व के माली, इसी खुशी में बजा दो एक बार ताली। लोग गुस्से में आकर के कहते हैं कि हम मर जाएंगे, परंतु मर के भी अगर चैन न मिले तो बोलो कहां जाएंगे? करमधाम। बंबई के सबर्बन हाईवे पर टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रेस है। आज से करीब 15 साल पहले वहां पर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। करीब एक घंटे के बाद एक मैनेजर ने अपने जनरल मैनेजर को पूछा कि सर, मैं कब से देख रहा हूं कि आप बार बार पानी पी रहे हैं, आप इतना पानी क्यों पीते हैं, क्या आप वाटर थेरेपी करते हैं? दूसरे असिस्टेंट मैनेजर ने पूछा कि सर, क्या आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, आप इतना पानी पीते हैं? तो जनरल मैनेजर ने कहा कि न तो मैं वाटर थेरेपी करता हूं, न मुझे कॉन्स्टिपेशन होता है, मैं तो क्रोध को काबू में रखने की थेरेपी कर रहा हूं। क्योंकि इस चर्चा के दौरान ऐसे कई पॉइंट्स होते हैं कि जो मुझे पसंद नहीं आते हैं, तो गुस्सा करने के बदले तुरंत मैं एक ग्लास पानी का पी लेता हूं और उसके बाद ही जवाब देता हूं। वो जो 10-15 सेकंड बीतते हैं पानी पीने में, उस समय मैं सोचता हूं कि भी क्या जवाब देना चाहिए, कैसे संतुलित रूप से मैं अपनी बात आप सबके सामने रखूं, और सचमुच ही मुझे उसमें बहुत ही सफलता मिलती है। आप में से कितने लोग मानते हैं कि क्रोध करना जरूरी है, क्रोध नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा? हाँ, अच्छा, हाँ, अभी भी कुछ लोग हैं कि जो समझते हैं कि क्रोध करना जरूरी है, और ऐसा आप क्यों मानते हैं? ये भी आपकी गलती नहीं है, परंतु ऐसी मान्यता क्यों हुई है? अगर हम ह्यूमन बिहेवियर के स्पेक्ट्रम को देखें, अगर हम ह्यूमन बिहेवियर के स्पेक्ट्रम को आप देखें, तो उसको हम एक स्पेक्ट्रम के रूप में समझ सकते हैं। लाइट बंद कर देंगे, थैंक यू। अगर हम अपने बिहेवियर के स्पेक्ट्रम को देखें, तो एक कोने में तो सप्रेशन है कि जो भी बुरा है, कि कई लोग अपनी भावनाओं को सप्रेस करते हैं और सप्रेशन से कैंसर हो सकता है। जिन्होंने हाथ उठाया, कईयों ने यह सुना है कि अपने क्रोध को अगर दबाएंगे तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, परंतु जैसे सप्रेशन बुरा है, ऐसे ही एग्रेशन, क्रोध भी उतना ही बुरा है। क्रोध से हार्ट अटैक हो सकता है, परंतु सबसे अच्छा रास्ता है बीच का रास्ता। बीच का रास्ता कौन सा है? बीच का रास्ता है कि असर्टिव बिहेवियर। आप अपनी फीलिंग्स को वर्णन जरूर करें, परंतु मन का संतुलन रख करके वर्णन करें, वह सबसे अच्छी बात है। अगर इसको आप समझ जाएंगे तो कभी भी आवश्यकता नहीं होगी। मैंने चर्चा भी की कि अगर सप्रेशन से कैंसर हो सकता है, तो एंगर से हार्ट अटैक हो सकता है। बट असर्टिवनेस इज बिहेवियर, वी हैव टू बिकम असर्टिव। हमें अपनी नाराजगी को व्यक्त करना है, और कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो अपना आवाज उठाना है, परंतु मन का संतुलन हम जरूर रखें। क्योंकि क्रोध व चंद पलों के लिए पागलपन है, तो इसके कारण मेंटल बैलेंस को सदैव कायम रखना सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये बात ठीक है कि इट इज नॉट गुड टू सप्रेस एंगर, बट स्टिल हायर ऑप्शन इज नॉट टू एक्सपीरियंस एंगर एट ऑल। अगर वो चिड़चिड़ापन अनुभव में ही ना आए, अगर हम बिल्कुल लाइट रहे, पॉजिटिव रहे, तो फिर क्रोध को एक्सप्रेस करने की भी जरूरत नहीं है। और कैसे यह संभव है, मैं आपको सिर्फ दो उदाहरण देना चाहता हूं, बहुत सारे उदाहरण संभव है। जब मैं फुल डे की वर्कशॉप कराता हूं तो हम कहीं 30-40 उदाहरण लेते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा आप प्रैक्टिकली समझ पाएंगे कि कैसे हमें अपनी फीलिंग्स को एसर्ट करना है। आपके सामने दो उदाहरण रखना चाहूंगा जो बड़े इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। एक बार एक महिला शाम के समय में अपना इंपॉर्टेंट टीवी चैनल देख रही थी, उनके पति ऑफिस से आए, उन्होंने चैनल चेंज कर दी, तो उसको इतना गुस्सा आया कि बाजू में बहुत ही एक्सपेंसिव सोनी का वॉकमैन पड़ा था, उन्होंने उठा के पटक दिया। फिर एक बार साइकोथेरेपी के सेशन में भी उस महिला ने कहा कि मेरा जो वह सीरियल मिस हुआ उसका गम नहीं है, परंतु आज भी मुझे वह खटकता है कि सोनी का वॉकमैन टूट गया। तब इसमें एसर्टिव बिहेवियर क्या होती, सबसे पहले तो उन्हें अपने मन को समझाने की आवश्यकता थी, क्योंकि कहते हैं कि किसी का व्यवहार क्रोध निर्माण नहीं करता है, हमारे विचार क्रोध निर्माण करते हैं। तो अगर उनके विचारों में परिवर्तन लाते कि मैं तो सारा दिन टीवी देख रही हूं, जो मर्जी वह चैनल देख रही हूं, मेरे पति शाम को घर आए हैं तो भले उनको भी थोड़ा समय अपनी मर्जी की सीरियल को देखने दो, या तो वह तभी यह कहती कि बस थोड़ा देर रुको, मैं ये सीरियल को पूरा कर लेती हूं, फिर तुमको जो मर्जी चाहे वह देखना। और एक ऑप्शन था कि भी दूसरा एक छोटा टीवी ले लेते ताकि दोनों जो सीरियल चाहे वह देख सकते। तो ऐसे एसर्टिव बिहेवियर इंपॉर्टेंट है। एक बार घर में टेबल पर 500 रुपये की नोट रखी थी, 1.5 साल का बच्चा खेलते खेलते वहां पर आया, उसने हाथ में नोट ली, पकड़ी, थोड़ा समय खेला, फिर फाड़ दी, तो पिता को इतना गुस्सा आया कि उसकी पिटाई कर दी। उस बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, हॉस्पिटल का बिल था 3,200 रुपया। तो यहां भी एसर्टिव बिहेवियर क्या होती, अगर अपने आप को पहले तो समझाते कि हमारी गलती है, बच्चे की गलती नहीं है, बच्चे को पता ही नहीं है कि ये 500 रुपए की नोट है, और चलो ये गलती कर भी दी तो उसको आंख दिखा सकते थे, थोड़ा बड़ा होता तो उसके बाद उससे हम कुछ समझा सकते थे। तो ऐसे हर परिस्थिति में अगर ये हम पक्का सोच ले कि मुझे एसर्ट करना है, मन को जितना हो लाइट रखना है, तो डायलेमा ही नहीं होगा कि क्रोध करना है या क्रोध नहीं करना है। और क्रोध वह एक प्रकार से पैरालिसिस है, इट इज अ साइकोलॉजिकल पैरालिसिस, कि तब आप कुछ सोच नहीं पाते क्या करना है क्या नहीं करना। क्रोध वह साइकोलॉजिकल न्यूमोनिया भी है कि जो हमारे शरीर और मन को एडवर्सली असर करता है। और क्रोध के क्या परिणाम है, योगियों ने तो कहा है कि क्रोध वह स्वर्ग और नर्क का फर्क ला देता है। एक बार एक जैन साधु थे, उनके पास जापान में जो राजाई घराने के सैनिक होते हैं वह वहां गया और कहा कि बताओ स्वर्ग और नर्क में क्या फर्क होता है। तो समझ गया कि अहंकार को लेकर के आया है, तो उसको पैर से सर तक देखा और कहा अपनी शकल तो आईने में देख के आ, तेरी शकल कैसी है, और पूछ रहा है स्वर्ग और नर्क में क्या फर्क होता है। उसे बड़ा गुस्सा आ गया, उसने अपनी तलवार निकाली, कहा कि मैं तुम्हारा सर काट दूंगा, लेकिन वो बिल्कुल स्वस्थ रहे। 2-3 मिनट के बाद उसे खुद एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब उसने ये कहा कि मैं तुम्हारा सर काट दूंगा, तो उसने कहा यही नरक है। और जब उसे एहसास हुआ कि मेरी बहुत बड़ी गलती, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो माफी मांगने लगा कि माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए। तो उस गुरु ने कहा यही स्वर्ग है। तो इसलिए क्रोध पर विजय प्राप्त करेंगे तो सचमुच स्वर्ग के लिए हम लायक भी बनेंगे। कहते हैं कि क्रोध क्या कहने तेरे, सबको रुलाया मार्ग से भुलाया, निरर्थक सीना तान कर फुलाया, देखो यह परिणाम है क्रोध का, खुद भी रोया जग को रुलाया। तो इसलिए क्रोध पर जरूर विजय प्राप्त करना है। और उसकी इफेक्ट्स हम देखें कि क्रोध की क्या इफेक्ट होती है। इट इज एन सेल्फ पैरालाइजिंग इमोशंस, जो बात हमने डिस्कस भी की कि शरीर और मन दोनों पर बुरा असर करता है। और भी उसकी हम हार्मफुल इफेक्ट्स देखें, मुख्य रूप से चार अंगों पर हम इसकी हार्मफुल इफेक्ट्स को देखेंगे। सबसे पहले तो है कि क्रोध की हार्ट पर क्या असर होती है, साथ ही साथ हमारे मस्कुलर सिस्टम पर क्या इफेक्ट होती है, ब्रेन पर क्या इफेक्ट होती है, जो सारी इम्यून सिस्टम है कि जो रोग प्रतिकारक शक्ति हमें कीटाणुओं से बचाती है, इस रोग प्रतिकारक शक्ति पर भी क्या असर होती है। जब आप क्रोध करते हैं तो कुछ ही पलों के बाद जो हमारी कोरोनरी वेसल्स है वो स्पाज़म में चली जाती है और इमीडिएटली हार्ट पर असर हो सकती है। इस प्रकार के प्रयोग भी किए गए हैं। ऐसे ही इमीडिएटली एक्सेसिव एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन रिलीज होने से भी हार्ट पर बुरी असर होती है। डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने अपनी एक किताब में एक बहुत ही आंख खोल देने वाले किस्से का वर्णन किया है। वह एक हॉस्पिटल में काम कर रहे थे और तब बहुत ही पैसे वाला व्यक्ति, उसे माइनर हार्ट अटैक आया था, वह उस हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। उसने नर्स को बुलाया तो नर्स को आने में थोड़ी देरी हो गई, और जब नर्स को आने में देरी हो गई तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो कहा आप लोग क्या समझते हो, मैं आपके ऊपर लाखों डॉलर का केस करूंगा, मैं यह कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। बहुत गुस्से में आ गया तो उसे जोरों से दोबारा हार्ट अटैक आया और उसकी मृत्यु हो गई। और जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उसका हार्ट फट गया था। कहते हैं कि इट्स अ ट्रू एग्जाम्पल विच आई एम कोटिंग। तो ऐसे ऐसी भयानक असर हमारे हार्ट पर हो सकती है। मसल्स भी इमीडिएटली मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शंस होने से सरदर्द होने की संभावना है, वह भी बढ़ सकती है। इसी प्रकार क्रोध के कारण कॉर्टिसोल और जो स्टीरॉइड हॉर्मोन्स है वह रिलीज होते हैं, और यह सारे इम्यूनो सप्रेसिव होने के कारण हमारा इम्यून रिस्पॉन्स कम हो जाता है। रोग प्रतिकारक शक्ति कम होने से हम कई कीटाणुजन्य रोगों के भी शिकार हो सकते हैं। ऐसे ही क्रोध से ब्रेन पर भी बुरा असर होता है। एक तो जो ब्रेन की कैपिलरीज है उसमें ब्लड सप्लाई कम होती है, और कई बार जब एक्सेसिव एंगर में वह माइक्रो कैपिलरीज रप्चर भी हो सकती है। बल तुरंत पता नहीं चलता है, लेकिन उस बार बार क्रोध आने से जो कम्युलेटिव इफेक्ट है वह सचमुच हजार्डस होना संभव है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सबके भी तो फिजिकल बातें हैं, मुझे कोई नुकसान नहीं होना है, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एंगर इज टेम्पररी इनसेनिटी। पागल व्यक्ति की क्या निशानियां होती है, हाँ किसको पागल कहते हो बताइए, हाँ लेमैन्स पॉइंट ऑफ व्यू पागल किसको कहते हो, हाँ जो तोड़ फोड़ करता है, ठीक है ना। तो क्रोध में भी हम तोड़ फोड़ करते हैं, या तो पागल व्यक्ति क्या है जो उल्टा सीधा बोलता है, तो क्रोध में भी हम कई उल्टी सीधी बातें बोल देते, भले हम फिर माफी भी मांग लेंगे, परंतु एक बार जो शब्द निकल गए वह तो हमेशा रहे। एक लड़के को बहुत गुस्सा आता था, कुछ समय के बाद उसे यह रियलाइज हुआ कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। तो उसने अपने पिता को कहा कि डैडी अब मुझे रियलाइज होता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो उसके फादर ने कहा ठीक है बेटे, एक सिंपल युक्ति करना, जब जब तुझे गुस्सा आए तो तू अपने बेडरूम में जाके कील है वो ठोक देना। तो उसने कहा ठीक है, बड़ा सिंपल है हाँ, उसे गुस्सा तो आता ही था, जब जब गुस्सा आता था बेडरूम में जाके दीवार में कील ठोक देता था। तो ऐसे 20-25 कील जब ठोक दी उसने, तो उसे और ज्यादा रियलाइज हुआ कि अरे रे तो बहुत गलती है, अभी कंट्रोल करना चाहिए। जब जब ऐसा रियलाइजेशन होता था, गुस्सा आता था, तो अपने आप को थोड़ा रोक लेता था। फिर से फादर के पास गया, कहा कि डैडी अभी मेरा कंट्रोल होने लगा है, पहले तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता था, तो अब मैं क्या करूं। तो कहा ठीक है बेटे, अब जब जब तू ऐसी इवेंट्स हो, सिचुएशन हो, परंतु अगर तू कंट्रोल कर ले तो तू एक कील को निकाल देना वहां से। कहा ठीक है। तो जब जब वो कंट्रोल कर लेता था तो एक एक कील को निकाल देता था, और कुछ दिन के बाद सारी कील वहां से निकल गई। तो बहुत खुश होकर फादर के पास गया, कहा कि देखो मेरी सारी कील निकल गई। तो उसके फादर उसे बेडरूम में ले गए और कहा देख बेटे, सारी कील तो निकल गई परंतु निशान तो रह गए, निशान तो नहीं गए। तो ऐसे ही ये सच बात है, केवल हमने तो एक बार बोल दिया, परंतु सामने वाला व्यक्ति जीवन भर उस बात को याद रखेगा और आपको सहयोग नहीं देगा। हाँ, जिन्होंने हाथ उठाया था अभी भी कन्विंस हुआ कि भी क्रोध पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, हाँ या ना? नहीं हुआ पहले भी था, अच्छा। अभी भी जो कुछ लोगों के मन में हो सकता है कि भी ये सब तो ठीक है, सिर्फ थियरी है, हाँ यह साइंटिफिक बात नहीं है। तो मैं आपको बहुत ही दो टॉप के साइंटिस्ट के ओपिनियन बताना चाहता हूं। उनमें से एक तो है डीन ऑर्निश, कि जिन्होंने पायोनियरिंग वर्क किया है, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू शो दैट कॉरोनरी ब्लॉक्स कैन बी रिग्रेस्ड। डीन ऑर्निश ने क्या कहा है कि इट्स नॉट जस्ट इनफ टू बी इन टच विथ एंगर एंड एक्सप्रेस इट, इन सम वेज दैट ओनली इंटेंसिफाइज द फीलिंग्स एंड फीड्स इन टू दैट डार्कनेस। सिर्फ जागृत होके एक्सप्रेस कर देना वो इनफ नहीं है, आप जैसे कि अंधेरे में भटक रहे हैं और कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और उल्टा ऐसे क्रोध को बार बार एक्सप्रेस करने से आपकी सहन शक्ति कम होती जाती है और वह आगे चल के बड़ी समस्या कर सकती है। और दूसरा एक बहुत ही अच्छा जो है, एक बहुत अच्छी किताब है, द मिसअंडरस्टूड इमोशंस। ये जो किताब है मिसअंडरस्टूड इमोशंस, उसमें लेखक अच्छी तरह से इस बात को समझाते हैं कि साइकोलॉजिकल रैशनल्स फॉर वेंटिलेटिंग एंगर डोंट स्टैंड अप अंडर साइंटिफिक स्क्रूटिनी। एक्सपेरिमेंटल जो एविडेंस है, द वेट ऑफ एविडेंस इंडिकेट्स प्रिसाइसली द अपोजिट, एक्सप्रेसिंग एंगर मेक्स यू एंग्रियर एंड सॉलिडिफाइज दैट एंग्री एटीट्यूड एंड इट एस्टैब्लिशेस इनफैक्ट अ हॉस्टाइल हैबिट। वैसे ही अल्टीमेटली आपके संस्कार बनने लगते हैं। तो इन दोनों से भी आप समझ गए होंगे कि क्रोध पर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ तो जरूर करना है। संयम की शक्ति को कौन नहीं जानता, त्याग के सामने तो स्वर्ग की गद्दी भी हिल जाती है। इसके कारण त्याग और सहन शक्ति को अपनाना है। और एक बात, हाँ अभी भी आपको कन्विंस न हुआ हो कि हमें एफर्ट करनी चाहिए, तो दिस इज परहैप्स द लास्ट एंड पावरफुल स्टोरी। एक राजा बहुत ही अच्छे हीरे ले आया, सच्चे हीरे ले आया, और वो ये जानना चाहता था कि क्या हमारे देश में ऐसा कोई व्यक्ति है कि सच्चे हीरे और झूठे हीरों का भेद समझ सके। उसने कहीं झूठे हीरों के साथ भी उनको मिक्स कर दिया और फिर ऐलान किया कि जो भी इन सच्चे हीरों को अलग कर पाएगा उसको मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। कई लोग आए परंतु किसी को भी पूरी सफलता नहीं मिली। जब बहुत लोग आए और किसी को भी सफलता नहीं मिली तो राजा को भी लगा कि सच है कि भी कोई सच्चे हीरे को पहचान नहीं सकता है। तो अंत में एक व्यक्ति आया, वो अंधा था। उसने आके कहा कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको बता दूंगा सच्चे हीरे कौन से। तो राजा ने कहा कमाल है, इतने अच्छे अच्छे लोग आए वह भी ये बता नहीं पाए, और तुम तो देख भी नहीं सकते हो, तुम कैसे इसको पहचान पाओगे। उसने कहा राजा जी एक मुझे सिर्फ मौका दीजिए, हाँ एक घंटे के लिए हीरे मुझे दे दीजिए, मैं आपको उसे डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगा। तो एक घंटा वह हीरे लेकर के बाहर गया और फिर वापस आया, और आके उसने सचमुच वो भेद बता दिया कि वे सच्चे हीरे कौन से है, झूठे हीरे कौन से है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, वे कोई भी ये पहचान नहीं पाया और इस व्यक्ति ने कैसे ये भेद पहचान लिया। तो उसको कहा कि मैं जरूर तुम्हें बड़े से बड़ा इनाम तो देने ही वाला हूं क्योंकि तुमने ये भेद पहचान लिया, लेकिन मुझे इसकी सीक्रेट बताओ तुम कि तुमने कैसे पहचाना, तुम तो देख भी नहीं सकते हो। उसने कहा राजा जी बड़ी सरल सी बात है, मैंने क्या किया कि जब मैं बाहर गया तो जहां बहुत ज्यादा धूप थी वहां पर मैं गया और उन हीरों को मैंने हाथों में रखा, और उन्होंने कहा कि भाई जो आप जो कांच के टुकड़े थे वो गर्म हो जाते थे और सच्चा हीरा है वह गर्म नहीं होता था। तो उसके आधार से मैंने पहचान लिया कि यह सच्चा हीरा है या झूठा है। तो आपको सच्चा हीरा बनना है या झूठा बनना है? सच्चा बनना है ना, तो गरम नहीं होना चाहिए, समझ गए? इसलिए कहते हैं जोश में आकर न खोना अपना होश, यह जोश ही निकालता है सभी के दोष। संभल जाओ अब भी वक्त है तुम्हारे पास, एक दिन यह तुम्हें कर देगा बेहोश। तो इसके कारण होश में आ जाओ। और अब क्या करना चाहिए? हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फैक्ट जो है कि हमें क्रोध के कारणों को समझ लेना। न्यूज़पेपर में पहले आता था कि खैरनार को गुस्सा क्यों आता है, वैसे ही आप भी ये पक्का करो कि आपको गुस्सा क्यों आता है। मैं आपको 12 कारण बताता हूं, थोड़ा डीप साइकोलॉजी को भी हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि एकदम ये सुपरफिशियल नहीं है। पहला जो की फैक्टर है कि जब दूसरे हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य करते हैं तब हमें गुस्सा आता है। और अब क्या करना चाहिए? करीब 30% एंगर आप देखेंगे तो इसी बात को लेकर के कि जब लोग हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य करते, हम चाहते हैं ऐसे दूसरे नहीं करते हैं, तो आप देखिए कुछ एक बातों पर ध्यान रखिए भी, जब भी कोई आपकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करे तो यह बातें अपने आप को समझाना, क्योंकि लॉजिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब तक भी जो मैंने इतना समय क्यों लिया, क्योंकि तर्क से अगर आपको समझ में आ जाए कि क्रोध पर विजय प्राप्त करना है तो आप पुरुषार्थ करेंगे। अब यह भी तर्क देखिए कि बुद्धि व तर्क की भाषा समझती है। एक उदाहरण से इसको स्पष्ट करना चाहूंगा। एक 9 साल की लड़की की मृत्यु हो गई, उसके पिता खूब रोए, रात दिन रोते थे, 6 मास के बाद भी वो कब कब रोते थे। एक दिन उन्हें स्वप्न आया, स्वप्न में देखा कि बहुत सारे फरिश्ते हैं, उन फरिश्तों के पीछे उनकी बेटी को भी देखा। वो जो सब फरिश्ते थे सभी की मोमबत्ती है, उनके हाथों में मोमबत्ती थी और फरिश्तों की मोमबत्ती वह जली हुई थी, और उसकी बेटी के हाथ में जो मोमबत्ती थी वह बुझी हुई थी। तो पिता वहां गए और कहा बेटे तुम्हारी मोमबत्ती क्यों बुझी हुई है? तो उस लड़की ने बहुत अच्छा जवाब दिया, कहा डैडी ये मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, बार बार मेरी मोमबत्ती को जलाने की कोशिश करते हैं, परंतु आपके आंसुओं के कारण वो भूत जाती है। दूसरे ही दिन से उन्होंने रोना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि तर्क मिल गया। अगर रोने से मेरी बेटी के जीवन में दुख आता हो तो मुझे रोना नहीं चाहिए। तो ऐसे अपने आप को ये तर्क से, मैं आपको करीब 5 बातें बता रहा हूं कि जब भी कोई आपकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करे तो ये 5 बातें बार बार अपने आप को रिपीट करना, बुद्धि उस बात को शायद मान जाएगी। एक तो ये पक्का करो कि किसी का व्यवहार नहीं परंतु हमारे विचार क्रोध निर्माण करते हैं। किसी ने मेरे विरुद्ध काम किया वो व्यवहार नहीं परंतु जो विचार है, मेरे अहंकार को जो ठेस पहुंची है उसके कारण शायद गुस्सा आ रहा है। दूसरी बात ये भी समझाओ कि अगर 50% भी लोग मेरी इच्छा के अनुसार कार्य करे तो मुझे बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट है, मेरी पत्नी मेरे से डिफरेंट है, मेरे बच्चे मेरे से अलग है, तो 50% तो जरूर वो अपनी इच्छा के अनुसार भी कार्य करेंगे। तीसरी बात यह भी समझाइए कि हर व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने का जन्मसिद्ध अधिकार है। क्रोध करके मैं उस अधिकार को क्यों छीन लेना चाहता हूं? चौथी बात यह भी समझाइए कि जैसे नाटक में हर व्यक्ति अलग अलग पार्ट बजाता है। हाँ, कोई सीरियल आप सभी देखते हो ना? हाँ, कौन सी सीरियल देखते हो? हाँ, जो भी आप सीरियल देखते हो, कभी बहुत ही, हाँ देखो, हाँ तो सभी एक जैसा पार्ट बजाए तो कोई मजा नहीं आएगा। हाँ, सस्पेंस भी होना चाहिए, खून होना चाहिए, मारामारी होनी चाहिए, तब मजा आता है। तो सचमुच जीवन भी एक सुपर मेगा सीरियल है कि जिसमें भिन्नता अवश्य आनी है और उल्टा उस भिन्नता का तो मुझे आनंद लेना है। पांचवी बात, अपने आप को अच्छी तरह से यह समझाइए कि मैं जैसी दुनिया चाहता हूं, मैं जैसा चाहता हूं कि लोग ऐसे बने, इस प्रकार से व्यवहार करें, ऐसी दुनिया कलयुग में तो हो ही नहीं सकती है। हाँ, सतयुग में ऐसी दुनिया आएगी, परंतु कलयुग में आशा रखना कि मैं चाहूं वैसे ही सब व्यवहार करे, वह बिल्कुल ठीक बात नहीं। तो ऐसे बार बार ये तर्क से समझाइए, एक भी, ये 5 में से एक बात भी आपको अच्छी लग रही है उसको रिपीट करिए, लिखिए चाहे तो। जब बुद्धि समझ जाएगी तो क्रोध भी खत्म हो जाएगा। दूसरी बात है, हाँ, आप में से कौन कौन लोग है वो समझते हैं कि मैं चाहूं वैसे ही होना चाहिए, थिंग मस्ट गो माई वे, ऐसा कौन चाहते हैं? हाथ उठाइए। हाँ, आपको ज्यादा गुस्सा आता है? हाँ, आता है गुस्सा कि नहीं? देखो, जो भी जिनकी भी यह मनोभूमिका है कि थिंग मस्ट गो माई वे, उनको जरूर ज्यादा गुस्सा आता है। और ये एक प्रकार से बचपन की एक आदत है कि बचपन में माता पिता ने आपने पानी मांगा तो आपको दूध हाजिर कर दिया, तो इसके कारण आपकी एक प्रकार के वह संस्कार ही हो गए कि मैं कहूं ऐसा ही होना चाहिए, और आगे चल के एक ऑब्सेशन, एक प्रकार के कड़े संस्कार हो जाते हैं। और हमें क्या करना चाहिए? अभी इस प्रकार की स्थिति हो तो फिर से तर्क से कैसे अपने आप को समझाएंगे? एक तो यह बात समझाइए कि थिंग मस्ट गो माई वे, ये जो साइकोलॉजी है वो रुण्य में पानी को ढूंढने के बराबर है। कि भाई वो पानी वास्तव में नहीं होता है ना, मिराज में पानी नहीं होता है, वह हम ही उसे देख रहे हैं, तो ऐसी ही मेरी हालत है। दूसरा ये भी समझाइए कि माता पिता की जो मेरे प्रति मनोदशा थी, माता पिता की जो मेरी और एटीट्यूड थी, वो अब जो आसपास मेरे लोग हैं उनकी वैसी एटीट्यूड कभी भी नहीं हो सकती, इसलिए ये अपेक्षा रखना बिल्कुल गलत है। ऐसी कुछ बातों को ढूंढ करके अच्छी तरह से अपने आप को समझाइए। तीसरी बात है टू कंट्रोल अदर्स। कई लोग क्यों गुस्सा करते हैं? आप में से भी जो लोगों ने हाथ उठाया, हाँ, एक बहुत अच्छे व्यक्ति ने मुझे कहा कि क्रोध के द्वारा मैं लोगों के व्यवहार को चेंज कर सकता हूं, तो इसके कारण मैं गुस्सा करता हूं। परंतु यह इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। भल क्रोध करेंगे तो डर के मारे आप चाहते हैं इसे लोग करने लगेंगे, बट इट इज इंडीड इमोशनल ब्लैकमेलिंग, और वह बात सही नहीं है। ऐसा करके मॉडिफाई करेंगे तो भी थोड़े समय के लिए करेंगे, लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं मिल सकते हैं। अभी डीप साइकोलॉजिकल रीजंस भी है। आप किसी से कोई चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करते करते आपको रियलाइज होता है कि सामने वाले व्यक्ति की जीत हो रही है, आप हार रहे हैं, आपका तर्क कमजोर पड़ रहा है, तो उसी समय आप गुस्से में आ जाते हैं ताकि चर्चा वहीं समाप्त हो जाए और आपको हार स्वीकार करनी नहीं पड़े। तो इसी स्थिति में भी अपने आप को यह समझाइए कि भी अच्छा तो है कि भी एक बार हार स्वीकार कर लूं, तो बार बार गुस्सा करना पड़ेगा। फिर अपने तर्क को अच्छा बनाऊं, अपनी आर्ग्यूमेंट को अच्छी बनाऊं ताकि उस तर्क में मेरा विजय हो। पांचवा कारण है कि कभी भी कोई इनजस्टिस होता है, कहीं पर अन्याय हो रहा है, तो कुछ लोग अन्याय को सहन नहीं कर सकते और तभी वह भड़क जाते। तो यह बात ठीक है कि भी अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए, परंतु क्रोध से रिजल्ट नहीं मिलेंगे। गांधी जी की तरह भले आप सत्याग्रह करो और कोई कैंपेन करिए उस अन्याय की ओर, ताकि आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिले, या तो मन को स्टेबल रख करके अपना आवाज भी उठाइए, परंतु क्रोध वह पागलपन है। छठी बात है कि जो आप मीनिंग देते हैं परिस्थिति को, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम पॉजिटिव मीनिंग देने लगे, पहले भी मैंने फर्स्ट सेशन में भी हमने देखा था, वो दो डॉक्टर की वाइफ भाग गई, याद है ना? हाँ, तो एक को गुस्सा आया, दूसरे को नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो मीनिंग दिया वह इंपॉर्टेंट। और देखो, एक पावरफुल उदाहरण बताता हूं। दो महिलाओं को हार्ट अटैक आया था और दोनों को ICCU में एडमिट किया गया था। दोनों महिलाओं के सामने एक जैसी टेंशन की परिस्थिति आई। दोनों को यह समाचार मिले, भले भारत में ऐसा नहीं होता है, ये फॉरेन की कंट्रीज में होता है, दोनों को ऐसा मैसेज मिला कि उनके पतियों ने डिवोर्स के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दी है। जब ये एक महिला को यह मैसेज मिला तो उसे बहुत गुस्सा आया, बहुत डिप्रेस्ड हुई और उसे मैसिव हार्ट अटैक आया और उसका देहांत हो गया। दूसरी महिला को जब यही संदेश मिला तो उसे बहुत खुशी हुई कि अब असंतुष्ट विवाहित जीवन से मुक्ति मिलेगी। तो मीनिंग विच यू गिव इज इंडीड वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी अपने आप को समझा दीजिए कि आग का यह दरिया है, जीना भी है मुश्किल, नफरत के इस दौर पर उपहार बांटना है। जो मीनिंग देना है वह सदैव पॉजिटिव मीनिंग देना है। सातवां है कि जब आप कोई डिस्कशन में, निगोशिएशन में लॉस कर रहे हैं, जो बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई, तो उस समय भी आप गुस्से में आ जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट कारण है कि अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए भी हम गुस्सा करते हैं। देखो, जो लोग बीमार होते हैं, बुढ़ापे में लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उनका कंट्रोल खत्म हो गया है। तो इसके कारण अभी अपने आप को वीक महसूस करते हैं तो तब थोड़ा अच्छा फील करने के लिए क्रोध करने लगते। जिनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, हीनता का भाव है, उनको भी ज्यादा गुस्सा आता है, उसे कवर करने के लिए वह गुस्सा करते हैं। तो हीनता का भाव नहीं लाइए, स्वमान को बढ़ाइए। स्वमान को बढ़ाएंगे तो आप बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं। और डीपर साइकोलॉजिकल रीजन है क्रोध। कई बार कोई कार्य को हम नहीं करते, कल करूंगा, पैसे परसों करूंगा, ऐसे प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते। और जब हम कोई चीज को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते, जब आपको आखिरी दिन जवाब देना होता है कि ये काम क्यों नहीं किया, तो उससे थोड़े समय पहले हम गुस्से में आ जाते हैं ताकि हमारे पास एक तैयार बहाना आए कि देखो, आप लोगों ने गुस्सा दिलाया ना, इसलिए मैंने ये काम नहीं किया। तो यह भी बहाना अच्छा नहीं है। बारहवीं बात है कि जब आप बहुत थक जाते हैं, जब बहुत भूख लगी है, उस समय भी टॉलरेंस पावर कम होता है और उसके कारण भी क्रोध आ सकता है। तो इन कारणों को अच्छी तरह से, और इसके अलावा भी कोई कारण हो सकता है, आपका और कोई कारण हो तो भी मुझे बताना, इसमें मैं और भी ऐड कर दूंगा ताकि सचमुच लोगों को फुल पर्सपेक्टिव मिले। इन सब बातों के बाद आपको क्या अपने आप को कहनी है, नोटबुक और पेन हो तो लिख भी लो, हाँ, ये स्टेटमेंट को लिख दो। याद रखिए, अपने गुस्से के लिए आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आपके गुस्से के लिए और कोई जिम्मेवार नहीं है। बाहर आने पर कली खिल जाती है, चाहो तो राह भी मिल जाती है। हाँ, क्रोध मुक्ति की चाह है सबको, हाँ या ना?
Yes.
है ना? वेरी गुड। अच्छा, तो देखिए अभी हम स्टेप्स देखते हैं कि प्रैक्टिकली क्या हमें करना चाहिए। जो क्रोधी व्यक्ति है उनका व्यक्तित्व माचिस की तीली जैसा होता है, मैचस्टिक जैसा होता है। माचिस की तीली को सर है परंतु दिमाग नहीं है, इसलिए जल्दी से जल जाती है। क्रोधी व्यक्ति को भी दिमाग होता है परंतु वह दिमाग का उपयोग नहीं करता है। तो क्रोध आए तब क्या करो, क्या करो? दिमाग का उपयोग करो। और दिमाग का उपयोग करने के लिए क्या चाहिए? दिमाग चाहिए। भगवान ने दिमाग तो हमको दिया है ना, ब्रेन तो दिया है, परंतु दिमाग का उपयोग करने के लिए समय चाहिए। और टाइम्स ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर भी, ये सच घटना है, मिस्टर जैन उसके जनरल मैनेजर थे आज से करीब 12 साल पहले, तो समय ले लेते थे। ऐसे ही एक गायनेकोलॉजिस्ट ने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया, हाँ आप भी सुनाना आपके कोई तरीके हो तो। उन्होंने कहा कि मेरे पति को अजीब सी आदत है, जब जब उनको गुस्सा आता है तो वो संस्कृत के श्लोक गुनगुनाने लगते हैं, और इसका बहुत अच्छा प्रभाव मेरे बच्चों पर भी पड़ा है। और जब बच्चों को गुस्सा आता है तो वो फिल्म के गीत गाने लगते हैं, इससे उनका गुस्सा कम हो जाता है। या तो गहरा सांस लीजिए, सचमुच डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग लीजिए, विच इज रिलैक्सिंग एज वेल एज आपको उसके द्वारा समय भी मिल जाएगा। कहते क्रोध आए तो तुरंत जोर से हंसने लगो, हंसना आता है ना, हाँ तो जोर से हंसो जब गुस्सा आए तो क्या होगा? कहते कि नायगरा के फॉल पे आप एक बाल्टी पानी डालो तो उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है? तो आपकी परिस्थिति में आप हंसो या गुस्सा करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो क्यों ना हंसे, कि जो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। भले अकेले में हंसो, किसके सामने न भी हंसो। और कहते जीवन में हंसी न होना वह बीमारी की निशानी है, इट्स अ साइन ऑफ पैथोलॉजी इफ यू डोंट हैव सेंस ऑफ ह्यूमर। तो इसलिए सेंस ऑफ ह्यूमर को मुझे जरूर डेवलप करनी है। फोर्थ इंपॉर्टेंट बात है कि जागृति के साथ सब कुछ करो। हाँ, ये सब भी पानी कब पिएंगे? जब पता चलेगा कि गुस्सा आ रहा है। नहीं तो बोल लिया उसके बाद तो कोई फायदा नहीं। से कहा है कि सब कुछ जागृति के साथ करना है। हाँ, तो व्यक्ति यहां मौजूद है या यहां मौजूद नहीं भी है, हर व्यक्ति ने क्रोध को कम करने का पुरुषार्थ जरूर किया है, क्योंकि ऐसी चीज है कि जो हमें तकलीफ देती है, परंतु उसमें हमें सफलता नहीं मिलती। क्यों सफलता नहीं मिलती है? क्योंकि क्रोध आ जाने के बाद पता चलता है कि क्रोध आया। बंदूक से गोली छूट गई, फिर सोचेंगे कि अरे गोली छूट गई तो कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए यह पॉइंट था कि जागृति के साथ सब कुछ करिए। अगर आप हर कार्य जागृति के साथ कर रहे हैं तो आपके विचारों के विषय में भी आप जागृत हो जाएंगे, और जब आप अपने विचारों के विषय में भी जागृत हो जाते हैं तो जो विचार आने की शुरुआत हुई, अंदर में चीड़ आने लगी, हाँ मुट्ठी बंद होने लगी, हाँ दांत पीसने लगे, जैसे कोई भी एक बात की शुरुआत हुई, अगर आपको पता चल गया कि अभी क्रोध आ रहा है ना, टेम्परेचर अंदर से बढ़ रहा है, वो मालूम पड़ गया, तो फिर कोई ना कोई स्टेप उठा सकते। और इसके कारण हर कार्य को जागृति के साथ करना बहुत ही जरूरी है। वह अवेयरनेस एक्सरसाइजेस हमने की, ऐसे ही एक सिंपल सा तरीका है। एक बार एक पति पत्नी जोरदार लड़ रहे थे, आपके घर में कभी ऐसा झगड़ा नहीं हुआ होगा? हाँ, अच्छा ऐसा नहीं हुआ होगा ऐसे। मैंने तो इसलिए कहा कि भयानक झगड़ा हुआ था, कि एक दूसरे को मारने पर आ गए थे और ऐसे ही जोरदार गालियां दे रहे थे, झगड़ रहे थे, झगड़ते झगड़ते बड़े आईने के सामने आ गए। आईने के सामने जब देखा कि ऐसा भयानक चेहरा दिख रहा है, हाँ, देखते एकदम शांत हो गए, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में शांत हो गए। क्यों? क्योंकि पता चल गया कि क्रोध से हम कैसे भयानक दिखते हैं। तो ऐसे ही जब गुस्सा आए तो आईने के सामने खड़े हो जाओ और देखो आपका चेहरा कैसा है, तो उसे भी अंदर में मोटिवेशन होगा और कूल डाउन हो जाएगा। हाँ, और भी कहीं है, मैं बताता हूं कुछ कुछ, फिर आप भी बताना। हाँ, आप भी कुछ था? अच्छा, नहीं, आप जरूर बताना, तो मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा। और आज भी मैं जो आपको बातें सुना रहा हूं, आपकी तरह कईयों ने अपने अनुभव सुनाए हैं, उसके आधार से मैं आपको सुना रहा हूं। तो इस प्रकार से ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें भी, भल कई बार ये लगता है कि तो सुपरफिशियल है, लेकिन फिर भी वह बातें मदद करती है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप अब है कि क्रोध वह एक विष चक्र है वास्तव में। उस विष चक्र को जितना जल्दी तोड़िए अच्छा है। जैसे कहा कि जागृति के साथ सब कार्य करते हुए क्रोध की प्रारंभ में ही उस विष चक्र को तोड़ दिया, बहुत अच्छा है। अगर मुख से कुछ बात निकल गई, फिर भी जितना जल्दी हो सके उस विष चक्र को तोड़िए। और उसके क्या तरीके हैं, जो आगे तरीकों की चर्चा की, वह भी यूज कर सकते हैं। साथ साथ उस व्यक्ति के बारे में, उस परिस्थिति के बारे में कुछ अच्छा सोचने लगी, छोटी सी भी कोई अच्छी बात उस व्यक्ति के विषय में हो, उसकी विशेषता हो, उस व्यक्ति ने आपको कोई मदद की है, वह पॉजिटिव एस्पेक्ट को आप थोड़ा भी रिपीट करने लगी, भले अंदर में दिल नहीं हो रहा है, फिर भी उसे रिपीट करिए, तो भी वह विष चक्र टूट जाएगा। डेनियल गोलमैन की, जिसने बहुत अच्छी किताब लिखी है योर इमोशनल इंटेलिजेंस, कि इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत सारा है, क्रोध को कैसे मैनेज करना, उन्होंने लिखा है कि जब मैं 16 साल का था तो मुझे माता पिता पर बहुत गुस्सा आया, मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने तय कर लिया अभी घर छोड़ के चले जाने, थोड़े से कपड़े लेके बैग फिक्स करके मैं चलने लगा। चलते चलते बहुत दूर तक, करीब आधा घंटा चला तो मैं इतना रिलैक्स हो गया कि मुझे लगा कि अरे तो मेरी गलती है, घर छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। और जब मुझे एहसास हुआ कि वे तो मेरी गलती है, तो मैं वापस आ गया और उसके बाद कभी ऐसा विचार मेरे मन में आया ही नहीं। तो जिसको कहते कूलिंग वॉक, कि जब क्रोध आए जितना जल्दी हो सके बस उस सीन को छोड़ दो और कहीं एकांत में चलने लगो, तो भी जब माइंड रिलैक्स हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको क्रोध की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ऐसे और कुछ सिंपल से तरीके हैं, जैसे कहा था कि भाई ब्रीदिंग करो, उसमें एक है जिसे कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, हाँ, कि जिसमें भी आपका गुस्सा निकल जाता है, पता है कैसे करते हैं, सब खड़े हो जाएंगे, बोले अभी धीरे से करना, आप सभी भोजन करके आए होंगे, हाँ, भोजन के बाद फोर्सिबली नहीं करना चाहिए, परंतु उसका जो एसेंस है कि हाथ को ऐसे रख के सांस लेना है, जब हाथ बाहर आए तो सांस को छोड़ना है, ऐसे 10 बार भी करिए तो क्रोध निकल जाएगा। और कहते सिंपल तरीका, एक बहन ने यूज किया, वो कहती है कि जब मेरे पति पर मुझे बहुत गुस्सा आता था तो मैं गुस्सा नहीं करती थी, लेकिन बाथरूम में जाके सांस निकालती रहती थी, हाँ, कपालभाति में करते ऐसे, हाँ, सांस को फोर्सिबली बाहर निकालती जाती थी और बस 1-2 मिनट में मैं ठीक हो जाए, फिर आके फिर से बात करने लगती थी। तो ऐसे गहरा सांस लेने से भी अच्छा रिजल्ट हो सकता है। आप प्लीज बैठिए। जितना जल्दी याद आ जाए, कोई सख्त सब्जी चबाने लगी है, गाजर, मूली, कोई भी सख्त सब्जी जल्दी जल्दी चबाइए, हाँ, गुस्सा उस सब्जी पे निकल जाएगा और व्यक्ति पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार गुस्सा जो है वो और किसी पर होता है, जिसे कहते हैं प्रोजेक्शन। यहीं पर ज्ञान सरोवर में ही मेरे एक सेशन के बाद एक युगल है मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि भाई ये है वो डेप्यूटी जनरल मैनेजर है, परंतु इनको बहुत गुस्सा आता है। हाँ, हम सब इनके गुस्से से बहुत तंग है। कहते बच्चों पर भी बहुत गुस्सा करते, मेरे पर भी बहुत गुस्सा करते। तो हम चर्चा कर रहे थे, 5-7 मिनट चर्चा की, तो उतने में उनके मुख से यह बात निकल गई कि कहा देखो मैं सच बात बताता हूं कि वास्तव में मेरा गुस्सा है ना वो मेरे जनरल मैनेजर पर है कि वो मैं चाहता हूं वैसे बिल्कुल नहीं करता है, उस पर मुझे इतना गुस्सा आता है, लेकिन जनरल मैनेजर पे तो गुस्सा नहीं कर सकता, उन्हें तो प्रमोशन नहीं मिलेगा, तो इसलिए घर में आके बीबी पर गुस्सा करता हूं, बच्चों को डांटता हूं। तो यह है प्रोजेक्शन। सचमुच चेक करो कि कहीं मैं प्रोजेक्ट तो नहीं कर रहा हूं। और यही कारण है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अपने क्रोध को प्रोजेक्ट करते हैं। इसलिए जापान में आज कई कंपनीज है कि जिसमें उस कंपनी के टेरेस पर बॉसेस के स्टैच्यूज होते हैं और ऑफिस के अंत में लोग जाके बॉस को गालियां देते, उस स्टैच्यू को मुक्का भी मार के आते हैं ताकि गुस्सा वहीं निकल जाए, फिर वो क्रोध को घर न ले जाए। भले हमारे पास ऐसी सुविधा न भी हो, फिर भी अगर आप देखते हैं कि भी और किसी पर गुस्सा है तो उसी को फेस करना है, या तो मन ही मन भले उसके ऊपर गुस्सा निकाल दो, परंतु दूसरे पर उसे प्रोजेक्ट हमें कभी भी नहीं करना है। हाँ जी, पंचिंग, हाँ ठीक है ना। तो ऐसे हाँ कर सकते हैं ना, क्यों नहीं, नहीं धीरे धीरे होगा ही, हम भी एडवांस हो रहे हैं, साइकोलॉजी को समझ रहे हैं, तो इंडिया में भी जरूर यह बात धीरे धीरे आएगी। तो ये कहना कि बॉस का स्टैच्यू रखते हैं टेरेस पर और सचमुच जाके मुक्का मारते हैं, कुछ गालियां देकर के आते हैं ताकि एक बार गुस्सा है वह निकल जाए। तो सबसे बड़ी बात कि इस विष चक्र को तोड़ना है। भले शांत हो जाओ, कुछ नहीं भी कहो, तो भी आप पाएंगे कि एक अवस्था आएगी जब आपको क्रोध करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। छठा बहुत इंपॉर्टेंट, यहां काफी लर्न करना है और इसको प्रैक्टिस करना है। वास्तव में ऐसा स्टेप है कि जिसके बारे में आपको अभ्यास भी करना पड़ा होगा। मैंने स्वयं मेरे जीवन में देखा है कि जब भल बहुत कम गुस्सा आया है, लेकिन जब गुस्सा आया है तब जब मैंने अपनी जांच की, जैसे कहा सेल्फ एनालिसिस करो, तो यह पता चला कि वह पहले से ही प्री प्रोग्राम्ड था। अंदर में कई बार यह सोचा था कि ऐसी परिस्थिति आएगी, यह व्यक्ति अगर ऐसे मेरे साथ व्यवहार करेगा, यह मुझे यह जवाब देगा, तो मैं ऐसे बोलूंगा, मैं ये करूंगा। और क्योंकि उस प्रकार का प्रोग्राम ऑलरेडी कॉन्शियसनेस में था, तो जब भी वो परिस्थिति आई फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में गुस्सा आ गया, पता ही नहीं चला। तो हमारे में से भी कईयों की इस प्रकार की स्थिति है। तो जो ये ऑलरेडी प्रोग्राम है उसको हम रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। और अब कैसे हमें उसे रीप्रोग्राम करना है, ध्यान से सुनना है, प्रैक्टिकल टेक्निक है जो न केवल क्रोध मुक्ति के लिए लेकिन और बहुत समस्याओं में आपको काम आएगी। चिंता से मुक्त होने में भी ये टेक्निक काम आ सकती है कि कैसे हम हमारी कॉन्शियसनेस को नया प्रोग्राम दे सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में हम कोई प्रोग्राम फीड करते हैं, ऐसे अपनी कॉन्शियसनेस में भी हम ये प्रोग्राम फीड कर सकते हैं। क्या करना चाहिए कि एक अच्छी रिलैक्सेशन की स्थिति में जाइए। मेडिटेशन सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपको शुरू में मेडिटेशन करने में दिक्कत होती है तो और कोई भले रिलैक्सेशन की टेक्निक करिए, और जब आप अच्छी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं तब एक वीडियो फिल्म की तरह याद करो कि कौन सी परिस्थिति में आपको क्रोध आया। पीछे की कुछ आपके पास ऐसी परिस्थितियां हो उसको सचमुच विविडली याद करिए, वीडियो फिल्म की तरह याद करिए कि क्या हुआ, कैसी आपको फीलिंग आई, कैसे गुस्सा आया। और जब आप विविडली उसको देखते हैं तो वह प्रोग्राम भी सरफेस पर आता है। और अब जो रीप्रोग्रामिंग करना है, तो रीप्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, कि आप फिर से इस फिल्म को लाइए कि ऐसी परिस्थिति फ्यूचर में भी आएगी, भले और कोई रूप में आएगी परंतु ऐसी परिस्थिति फ्यूचर में भी आ सकती है। और जब ऐसी परिस्थिति फ्यूचर में आएगी तो मैं अपने आप को रिलैक्स रखूंगा, मेरा मन बिल्कुल स्टेबल होगा और स्टेबल रह करके मैं अपनी बात सामने वाले व्यक्ति को बताऊंगा, मैं ऐसे ऐसे बोलूंगा। भल कई बार आवश्यकता होती है, हम इसकी चर्चा भी करेंगे कि एक्सप्रेसिंग इट इन राइट वे, कि आपको अगर आवाज बढ़ाने की जरूरत है तो भले भी प्रोग्राम दीजिए कि मैं थोड़ा मोटे आवाज में बोलूंगा लेकिन अंदर में मैं बिल्कुल शांत हूं, अंदर में बर्फ की तरह शांत हूं, सिर्फ वो एक रिजल्ट के लिए मैं अपने आवाज को थोड़ा बड़ा करूंगा, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हूं, आई एम एक्सट्रीमली कूल और एसर्ट कर रहा हूं अपनी बात को, ऐसे ऐसे मैं यह बात को बता रहा हूं। पूरा वीडियो फिल्म की तरह देखिए, ऐसा अगर आप कई बार करेंगे तो यही प्रोग्राम आपके कॉन्शियसनेस में फिक्स हो जाएगा और जब भी आपके सामने वो परिस्थिति आएगी ऑटोमेटिक वो प्रोग्राम याद आ जाएगा और नेचुरली उसी रीप से फिर आप औरों के साथ व्यवहार करेंगे। भले अभ्यास की जरूरत है परंतु थोड़ा इसमें अगर अभ्यास किया जाए तो बहुत अच्छा परिणाम मिल सकता है। यह जो हमने रीप्रोग्रामिंग किया, आप कहेंगे कि वे उसको हमें डिलीट भी करना पड़ेगा ना? उस प्रोग्राम को जो गलत प्रोग्राम अंदर में गया है उसको डिलीट भी करना पड़ेगा ना? तो कैसे डिलीट करेंगे? फिर से वो रिलैक्सेशन की स्थिति में चले जाइए और वो प्रीवियस एंगर वाले सिचुएशंस को देखिए। सिर्फ अगर आप फेस भी करेंगे तो उसकी इफेक्ट कम होती जाएगी। देखा गया है कि बेस्ट एंटीडोट ऑफ फियर इज टू फेस इट, और यह सब फियर के लिए ही नहीं है, क्रोध के लिए भी बिल्कुल सही है। अगर मेंटली उस सिचुएशन को आप फेस करो और कूल रहो, दोबारा वह सिचुएशन आए तो भी आप कूल रह सकते हैं। हाँ, एक सिंपल उदाहरण सुनाता हूं, इट्स एन एक्सपेरिमेंट ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी, कि एक बिल्ली को शॉक्स दिए गए और जब जब बिल्ली को शॉक दिए तब साथ साथ में रेड लाइट भी दिखाई गई, कि जब भी शॉक दिए तब रेड लाइट दिखाई गई। ऐसा बहुत बार किया और फिर देखा कि भल शॉक नहीं दो, सिर्फ उसको रेड लाइट दिखाओ तो भी क्या होगा? तो भी शॉक की फीलिंग आएगी, क्योंकि वह प्रोग्राम अंदर में गया है कि जब भी रेड लाइट दिखती है तब शॉक लगना ही है। तो अब यह एक नेगेटिव प्रोग्राम अंदर में चला गया कि भी जब भी रेड लाइट देखते हैं तो शॉक लगना है। तो हमारे में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है, न क्रोध से संबंधित और कई बातों में नेगेटिव प्रोग्राम कॉन्शियसनेस में चला गया है। इसके कारण भल वह परिस्थिति डिप्रेशन करने वाली नहीं है, वह तनाव देने वाली नहीं है, डर निर्माण करने वाली नहीं है, फिर भी हमारे रिएक्शंस नेगेटिव होते हैं। अब इस प्रोग्राम को डिलीट करना था तो क्या किया जाए? बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट ने दूसरा एक प्रयोग किया कि बिल्ली को दूध पीने के लिए दिया, जब जब उसे भूख लगती थी दूध पीने के लिए देते थे और जब दूध पीने का आनंद ले रही थी तब धीरे से रेड लाइट सामने लाते थे। तो जब पहली बार तो रेड लाइट लाए तो उसे सचमुच शॉक लगा, बल थोड़ा सा कम था क्योंकि वह दूध पीने का आनंद ले रही थी, और जब ऐसा बार बार किया तो शॉक बहुत तेज गति से वह कम होता गया, क्योंकि उसे यह रियलाइज होने लगा कि रेड लाइट शॉकिंग नहीं है, वह एक आनंद की स्थिति में थी जिसके कारण भी वह प्रोग्राम जल्दी जल्दी डिलीट होता गया। तो ऐसा ही हम भी अगर करें रिलैक्सेशन की स्थिति में उस परिस्थिति को सामने लाए तो जो भी आपके नेगेटिव रिएक्शंस है वो डे बाय डे कम होते जाएंगे। और फिर तर्क से भी समझाइए, क्योंकि बुद्धि वह कौन सी भाषा समझती है? कल बताया था कौन सी भाषा समझती है? तर्क, हाँ, रीजनिंग। तो उसके अंत में लॉजिक से भी अपने आप को रिपीटेडली बताइए तो भी वह प्रोग्राम डिलीट होगा। ना, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने तो ऐसा भी अभ्यास किया कि भाई ये रीजनिंग से समझो और फिर अपने आप को कहो डिलीट डिलीट डिलीट, ये गलत प्रोग्राम मेरे अंदर है, आप बोलो सचमुच, और ऐसा भी रिपीटेडली करो तो वो प्रोग्राम डिलीट होता जाएगा। तो यह रीप्रोग्रामिंग इज अ वेरी गुड थिंग। सातवां इंपॉर्टेंट तरीका है कि एक्सप्रेसिंग इट इन अ राइट वे। एरिस्टोटल ने बहुत अच्छी बात कही है। एरिस्टोटल ने कहा कि क्रोध सही वक्त पर सही कारण से सही व्यक्ति की ओर और सही मात्रा में बिल्कुल ठीक है, परंतु ऐसा होना असंभव है। प्रैक्टिकल में अगर देखो तो जब भी हमें गुस्सा आता है तो यह सब जो उसके क्राइटेरिया है वह लागू नहीं होते हैं। फिर भी अगर आप समझते हैं कि भी क्रोध से आपको कुछ रिजल्ट मिल रहा है, भले टेम्पररी भी मिल रहा है, तो झूठ मूठ का क्रोध करो, लेकिन बहुत एक्टिंग करनी पड़ेगी, बहुत अपने आप को तैयारी करनी पड़ेगी, जैसे एक्टर तैयारी करते हैं, क्योंकि हमारे जो एंगर के सिचुएशन है वह लाइफ से रिलेटेड है। बच्चे नहीं पढ़ रहे, सचमुच अंदर में आपको चीड़ आती है कि क्यों नहीं पढ़ रहे, इतना भी नहीं समझते हैं। अगर वो फीलिंग खत्म हो जाए बिल्कुल कि मैं जरा भी डिस्टर्ब नहीं हूं, सिर्फ क्योंकि मैं रिजल्ट चाहता हूं इसलिए आवाज को ऊंचा कर रहा हूं, ऐसे मैं एक्टिंग कर रहा हूं, तो अगर आप परफेक्ट एक्टिंग करो तो कोई बात नहीं। जैसे कि अगर छोटा सा 2 साल का बच्चा रोड पर खेलने के लिए जा रहा है और आपको पता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, तो तब यह आवश्यक है कि आप झूठ मूठ का भी गुस्सा करेंगे तो वह रियलाइज करेगा और रोड पर नहीं जाएगा। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके ऐसे वर्स्ट सिचुएशन अगर आप समझते हैं तो उसमें सही रूप से एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। आठवीं इंपॉर्टेंट बात कि लर्न टू रिमेन कंफर्टेबल व्हेन अदर्स डोंट एक्ट अकॉर्डिंग टू योर डिजायर। जब लोग आपकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते तब उल्टा कंफर्टेबल रहिए। इससे भी आगे की स्थिति है कि सिर्फ कंफर्टेबल नहीं रहना है, उसका आनंद लीजिए। जैसे कहा भी है कि जीवन क्या है, क्या बताया था, जीवन क्या है, हाँ कहा था कि जीवन सुपर मेगा सीरियल है। हाँ अभी भी जो सीरियल्स चल रही है, कई लोग कहते हैं कभी भी बंद होने वाली नहीं है, हाँ क्योंकि उन्होंने प्रेक्षकों का इंटरेस्ट देख लिया है। तो जीवन भी ऐसी सीरियल है, अंत तक चलने वाली है, उसमें मैं एक्टर हूं और एक्टर के रूप में मुझे सिर्फ अपना पार्ट बजाना है, और एक्टर हूं तो इसलिए दूसरों का भी मुझे आनंद लेना है। मैं एक्टर भी हूं और प्रेक्षक भी हूं, मैं इस सीरियल को देख भी रहा हूं औरों की, तो जरूर उसमें भिन्नता होगी तो आनंद आएगा। तो वह जो डिफरेंस है उसका अगर आनंद भी हम लेने लगे तो उल्टा क्रोध के बदले क्या होगा, आपको खुशी आए। और अब तीन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अल्टीमेट सॉल्यूशन। अभी तक जो बताए वो अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है, वो सब टेम्पररी बातें हैं। कि भी फ्रैक्चर हो गया है उसको जॉइंट करने की कोशिश करते हैं, परंतु अल्टीमेटली जो काम करता है वह है क्रोध से अपोजिट इमोशंस डेवलप करो। क्रोध से अपोजिट क्या है, हाँ क्या है अपोजिट, हाँ जी शांति, अच्छा हाँ शांति को डेवलप करो। और अपोजिट क्या है, हाँ जी कामनेस, हाँ हाँ और जी हंसना, वो हमने डिस्कस भी किया। इमोशंस में अगर देखो तो गुस्से के अपोजिट क्या है, प्यार है। हाँ तीन इमोशंस है, हाँ तीनों की हम चर्चा करेंगे। एक तो है प्यार, तो क्रोध नहीं करो परंतु प्यार करो। हाँ सभी खड़े हो जाएंगे, हाँ आप यहां आइए, आइए आइए, हाँ आपको टेक्निक भी सुनानी है ना, जरूर जरूर। हाँ सब खड़े हो जाएंगे, एक एक पार्टनर बनाइए, भाइयों भाइयों को पार्टनर बनाएंगे, बहने बहनों को पार्टनर बन, आप पति पत्नी है तो पार्टनर बन सकते हैं, हाँ इसे भी पार्टनर है लाइफ में, ठीक है। अच्छा अब आपके पास कोई चीज हो, हाँ बहुत प्यार से अपने पार्टनर को दो, हाँ पहले मैं देता हूं फिर आप सब मुझे फॉलो करेंगे, प्रॉमिस। अच्छा हाँ देखो पार्टनर का हाथ पकड़िए, पकड़िए हाथ, सबने पकड़ा। अच्छा पार्टनर की आंखों में देखिए, करो करो, देख रहे हैं अभी, कर नहीं रहे हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक गले नहीं मिलेंगे, देखो अभी भी नहीं मिल रहे,
अगर नहीं मिल रहे तो पार्टनर बनाने से
पहले सोचना था। हाँ तो भाव क्या था कि क्रोध नहीं करो परंतु प्यार करो। देखो बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, जब बच्चे छोटे हैं और आप क्लिनिक से या हॉस्पिटल से घर जाते हैं तो भाग के आपको गले मिलने आते हैं, लेकिन आप बच्चों को डांट देते हैं तो बच्चे अच्छी आदत भी भूल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे इंटेलिजेंट बने, जीवन में प्रोग्रेस करें, हाँ बहुत सिंपल एडवाइस है, हाँ बच्चों को गले मिलो दिन में दो बार, ऑटोमेटिक बच्चे डेवलप होंगे। गिव देम अनकंडीशनल लव, कोई शर्त न हो प्यार के अंदर। लोग कहते हैं कि भाई फॉलिंग इन लव, बट मैं सोचता हूं वी शुड बी टॉकिंग अबाउट राइजिंग इन लव। लव इज समथिंग पॉजिटिव, इट्स समथिंग स्पिरिचुअल। हाँ और दो बातें हैं, अपोजिट इमोशंस, बहुत पावरफुल है लव। दूसरा है माफ कर दो, हाँ क्रोध नहीं करो परंतु माफ कर दो। गलती होती है तब क्रोध आता है, हाँ तो चलो माफ करके दिखाओ, अपने पार्टनर को माफ करके दिखाओ। अच्छा देखो मैं करता हूं फिर आप करना। हाँ देखो गलती हो गई, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं।
अगर मैं ये करूं मुझे माफी देती करूं
कि मुझे माफ तो करना है ना,
नहीं बीवी कहती हट जा तेरा तो रोज। अच्छा
तो दूसरी बात है सचमुच माफ कर दो, और तीसरा है दया करो। यहां पर कोई थूकेगा तो हमको गुस्सा आएगा, ठीक है ना, परंतु बीमार व्यक्ति वॉमिट करेगा तो भी गुस्सा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि बेचारा बीमार है। तो ऐसे दया करो, तो इन तीन पॉजिटिव इमोशंस को अपनाओ। या प्लीज सिट डाउन, थैंक यू थैंक यू। हाँ सुनेंगे, पहले तो ताली बजाओ साहब स्टेज पे आए, क्या नाम है? हाँ क्या नाम?
वीके मिड्डा।
वीके मिड्डा, हाँ देखो आपको और टेक्निक सुना रहे हैं कि क्रोध आए तो क्या करना।
एक मेरे फ्रेंड थे अमृतसर में, मैं जब रहता था तो उनकी बीवी और दोनों आपस में काफी झगड़ा होता रहता था, तो सदा जी थोड़े दुखी थे, रोज झगड़ा होता है, कभी बीवी ऊपर कभी बीवी हस्बैंड नीचे, मतलब कभी हार उसकी कभी हार हस्बैंड की कभी, मतलब लड़ते थे। तो वो गोल्डन टेम्पल गया और भाई जी से पूछा, भाई जी मैं क्या करूं? तो भाई जी कहते हैं यार जब लड़ाई होने लगे तो चला जाया करके, लीव दिस सीन, लेट कैन ऑल्सो बी बन। तो उसने वो बात पल्ले बांध ली। एक दिन आई, घर में लड़ाई हो गई, अब बीवी को बहुत गुस्सा चढ़ा, उसने गई रसोई में बेलन उठा दिया, वो बेलन उठाया तो भागने लगा बीवी पीछे पीछे। सरदार जी को पता नहीं क्या सूझा, वो पलंग के नीचे चले गए। वो कहते निकल उन, कहना मैं घर का मालिक हूं, जहां मर्जी बैठूं।
तो लीव द सीन, लीव द सीन, बहुत अच्छा है। हाँ ऐसे सचमुच आप भी योग करो तो आपको कोई क्रिएटिव आइडिया आएंगे कि कैसे क्रोध पर विजय प्राप्त किया जाए। देखो ये दो पंक्तियां हैं कि जिसको भी आप अच्छी तरह से याद रखना, हाँ तो आपका प्यार बढ़ेगा। एक तो है प्रेम संबंध और कर्तव्यों का सार है, यह परिवर्तन का बनता आधार है, प्रेम शर्तों पर नहीं किया जाता, यही प्रेम की बढ़ाई है, प्रेम रूहों का सच्चा स्वरूप है, प्रेम छाया है जहां तपती धूप है। तो इसलिए इंटरनल प्यार को डेवलप करो, क्योंकि वह रूहों का सच्चा स्वरूप है। दूसरा क्षमा के बारे में है यह कि क्षमा करने में ही शांति होगी, यही जिंदगी में बड़ी क्रांति होगी। क्षमा गिनती नहीं की जाती, इसे तो मुफ्त में दी जाती। क्षमा जीना है, बदला मरना है, नहीं क्रोध में जलकर सड़ना है, मुझे तो क्षमा करना है। तो ऐसी बातों को याद करिए तो ऑटोमेटिकली जो तीन अपोजिट दवाइयां है वह आपके जीवन में आती जाएगी और क्रोध की आवश्यकता नहीं रहेगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपके जो क्रोध करने के कारण है, मोटिव्स है जिसको कहते हैं, वो मोटिव्स को अगर पहचानो, अगर वो सही नहीं है मोटिव तो उसे चैलेंज करो कि भी ये गलत है। जैसे कहा था कि अगर हम चर्चा में हार रहे हैं तो गुस्से में आ जाते हैं, कोई काम को डिले कर रहे हैं तो भी अंत में गुस्से में आ जाते हैं कि हमें तैयार कारण मिल जाता है। ऐसा कोई भी कारण हो तो अपने आप को चैलेंज करो कि इसको फेस करना। चर्चा में हारना अच्छा है परंतु क्रोध करने से फायदा नहीं। जिम्मेवारी को स्वीकार करना अच्छा है कि मैंने काम नहीं किया तो दोबारा अच्छी तरह से उस कार्य को मैं पूरा करूंगा। और बहुत जो जरूरी चीज है वह है कि आपके इनर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बढ़ाइए, संतुष्टता को बढ़ाइए। जो लोग अंदर से असंतुष्ट है वह जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। तो अब सेटिस्फैक्शन को हम कैसे बढ़ाए? एक तो ऐसा ही एक कारण, और एक व्यक्ति मेरे से चर्चा कर रहा था, वह अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने भी कहा कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, समझ में नहीं आता क्यों गुस्सा आ रहा है। और जब चर्चा कर रहे थे तो चर्चा करते करते उन्होंने खुद यह बात बताई कि मैंने बहुत लोगों को मदद की है कि भी जिनके पास नौकरी भी नहीं थी, ऐसे लोगों को भी मैंने मदद की कि भाई वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें। पहले मैं कुछ धन भी दिया और कोई तरीके से भी उनको मदद की, सारा सिखाया। और जब शुरुआत में उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया तो रोज मेरे पास आते थे, दिन में 10 बार फोन करते थे, मेरी राय लेते थे। और अभी वह लोग कई बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, लेकिन अभी कोई मेरा भावी नहीं पूछता है। हाँ, मुझे फोन तो नहीं करते परंतु मैं खुद फोन करता हूं तो भी कहते भाई साहब क्यों हमारा समय बर्बाद कर रहे हो, ना हमको बिजनेस करने दो। तो कहते ये सुन के मुझे गुस्सा आता है। तो जब ऐसी स्थिति हो तो भी हमें यह सोचना चाहिए कि मैंने जो मदद की, कहते हैं नेकी कर कुएं में डाल, तो मैंने उनको मदद कर दी, उनके दिल में तो कोई ना कोई भाव होगा भले मुझे फोन नहीं करते। और मैंने कोई अपेक्षा नहीं रखी, अगर एक्सपेक्टेशन से कोई भी कार्य करते तो तनाव आएगा और डिस्टर्बेंस भी आएगा, तो मुझे औरों से एक्सपेक्ट नहीं करना। और मेरी आप अपनी पॉजिटिव बातों को सोचो तो इनर सेटिस्फैक्शन है, बिकॉज यू आर ए यूनिक पर्सन इन दिस वर्ल्ड। कहते हमारे सर का एक बाल भी इस दुनिया में यूनिक है, हमारे जैसा और किसी का भी नहीं है। तो जब इतनी यूनिकनेस है तो मैं क्यों अपनी तुलना औरों के साथ करके डिस्टर्ब हूं? आप अपने ही पॉजिटिव पॉइंट्स को सोचिए तो ऑटोमेटिक सेटिस्फैक्शन आएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अंदर में झांकना। मेडिटेशन क्यों आवश्यकता है? क्योंकि जब आप अंदर देखने लगेंगे तो ऑटोमेटिक मेडिटेशन की ओर रुचि बढ़ेगी और आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा। एटलीस्ट इस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने आप को एक प्रश्न पूछना, बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, एक प्रश्न अपने आप को पूछना कि जीवन के अंत में मैं क्या चाहता हूं, या तो मेरे जीवन का एक सचमुच लक्ष्य क्या है। और अगर यह प्रश्न आप अपने आप को पूछेंगे तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ सकता है, क्योंकि देखा गया है कि आज हम बहुत कुछ कर रहे हैं। आप बहुत पैसा कमाने की कोशिश करते हैं और चीजें प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, परंतु अगर आपको सच्चा सुकून नहीं मिलता है, सच्चा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो उसका अर्थ क्या? उसका क्या अर्थ? कि हमने गलत रास्ता चुना है। आपको यहां पर ज्ञान सरोवर में आना है, आप 3 घंटा घूम रहे हैं परंतु ज्ञान सरोवर के नजदीक भी नहीं पहुंचे तो उसका मतलब क्या कि रास्ता भूल गए। तो वास्तव में देखो तो आज भी हम सभी भी जीवन में रास्ता भूल गए। और यह अगर आप प्रश्न अपने आप को पूछेंगे कि हम जीवन में क्या चाहते हैं और उसके लिए आप एफर्ट करो तो जरूर जो चीज हमें सचमुच चाहिए वह प्राप्त हमें हो जाएगी। और सचमुच क्या चाहिए जीवन में? शांति चाहिए, देखो आनंद चाहिए हमें, नहीं प्यार चाहिए ना, सुख चाहिए। तो यह सब तो हमारे में ही है, तो क्यों ना उसकी प्राप्ति तो योग के द्वारा हम करें। भल शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए 12 घंटा भी कार्य करो कोई बात नहीं है, आप 12 घंटा अच्छी तरह से कार्य करो, परंतु अंदर में पक्का हो कि यह जो मैं 12 घंटा बिता रहा हूं वो शरीर की कंफर्ट के लिए बिता रहा हूं, उससे सच्ची शांति प्राप्त करने के लिए नहीं बिता रहा हूं। सच्ची शांति के लिए मुझे 1 घंटा तो देना होगा कि जिससे वो इंटरनल हैप्पीनेस, एक सदा के परपेचुअल सेटिस्फेक्शन का मैं अनुभव कर सकूं। और उसके लिए भी चाहिए, उषा बेन ने भी अलग अलग तरीके से आपको समझाया, मैं और एक अलग तरीके से आपको समझाता हूं। एक बार कबीर जी चक्की चला रहे थे, आटा पीस रहे थे, और वो तो चिंतक थे, सोचते थे, तो आटा पीसते पीसते सोचने लगे और सोचते सोचते रोने लगे। रोते रोते उन्होंने एक दोहा लिखा, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। क्या देखा कि जब चक्की चलती है तो कोई भी दाना साबुत नहीं बचता है, सारे के सारे पीसे जाते हैं। ऐसे ही संसार की चक्की भी चलती है तो उसमें हम सब पीसे जाते हैं। उनका बेटा कमाल भी बाजू में बैठा था, वो भी देख रहा था, वो भी देखता गया देखता गया। थोड़ी देर के बाद खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते उसने भी एक दोहा लिखा। हाँ, ध्यान से सुनना क्या लिखा कमाल ने लिखा, चलती चाकी देख कर दिया कमाल ठठियाई, जो कील से लगा रहे उसे काल कभी न खाई। समझ गए? कमाल ने क्या देखा कि जो दाना कील से लगा रहा था वो पीसा नहीं जाता था। तो ये संसार रूपी चक्की में भी कील कौन है? परमात्मा कील है, वो परमात्मा रूपी कील से लगे रहो, ऐसे ही बातें करते रहो, फ्रेंड से जैसे बातें करते करते रहो। और एक बहुत प्रेरणादायक कहानी है, एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो कभी चर्च में नहीं जाता था, उनकी वो बेटी के साथ रहता था अकेला। उसकी बेटी को बड़ा आश्चर्य होता था कि पिताजी चर्च में भी नहीं जाते, लगता है वो भगवान को मानते ही नहीं है। जब उनका मृत्यु का समय नजदीक आया तो उसने सोचा कि भी कम से कम मृत्यु से पहले तो पिताजी को भगवान की कोई एक दो बातें सुनाई जाए। तो उसने फादर को रिक्वेस्ट की कि फादर प्लीज आप एक बार हमारे घर आकर के पिताजी को कुछ तो भगवान की बातें बताइए, तो अंत तो उनका अच्छा हो। तो जब फादर घर आए तो वह व्यक्ति नीचे सोया हुआ था, लेटा हुआ था, और सामने एक कुर्सी रखी थी। तो उसने फादर को बैठने के लिए भी नहीं कहा तो उनके चेहरे की रेखाएं बदल गई। तो उन्होंने जब देखा कि इतना बड़ा व्यक्ति है उसको मैं बैठने के लिए भी नहीं कहता हूं, तो उनके दिल में विचार आया और कहा कि देखो मैं आज आपको राज सुनाता हूं, ये आपको जरूर बुरा लगा है कि आप मेरे घर आए और मैं आपको ये कुर्सी पे बैठने के लिए भी नहीं कहता हूं, कुर्सी तो खाली पड़ी है। तो उन्होंने फिर उसका अच्छा से राज सुनाया कि भाई मैं आपको क्यों बैठने के लिए नहीं दे सकता हूं। और फिर थोड़ी देर में तो फादर चले गए। 2 दिन के बाद उनकी बेटी का फोन आया कि पिताजी का देहांत हो गया है और लगता है कि पिताजी तो भगवान को नहीं मानते थे, तो अंत समय में बहुत उनको कष्ट हुआ होगा, बहुत तड़फड़े होंगे, और वही छटपटा करके वह जो सामने कुर्सी पड़ी रहती थी ना उस पर सर डाल करके उनकी मृत्यु हो गई। मैं घर आई तब मुझे पता चला। तो जब वो फादर ने यह सुना फोन पर तो एकदम साइलेंस में हो गए। तो थोड़ी बार एकदम साइलेंस में रहने के बाद उन्होंने कहा कि बेटे तेरे पिताजी तो मेरे से भी महान थे। मैं तो एक सन्यासी हूं, मैंने सब कुछ छोड़ करके मैं फादर बना हूं, लेकिन मेरा भी भगवान से इतना अच्छा संबंध नहीं है जितना अच्छा संबंध तेरे पिताजी का भगवान के साथ था। और फिर उन्होंने सुनाया कि क्या कहा था उस दिन जब मैं घर आया, तब तेरे पिता ने मुझे यह राज सुनाया था कि वह कुर्सी खाली क्यों है वहां पर, कि जो राज तुझे भी पता नहीं है पिता। और क्या कहा था उस दिन उस व्यक्ति ने फादर को कहा था कि मुझे तो ज्यादा प्रार्थना करना नहीं आता है, मैं तो अनपढ़ हूं, हाँ मुझे कैसे प्रेयर करनी वह भी मालूम नहीं है, लेकिन मैं तो भगवान को बड़े सरल तरीके से याद करता हूं। मैंने क्या किया है, कई सालों से मैं भगवान को इस कुर्सी पे बिठा देता हूं और सारा दिन उनके साथ बातें करता रहता हूं, बस मेरा यही तरीका है और कुछ मुझे नहीं आता है। तो उनकी मृत्यु कैसे हुई, कैसे हुई मृत्यु, हाँ भगवान की गोदी में सर डाल के उनकी मृत्यु हो गई। तो इसीलिए वो फादर ने कहा कि तुम्हारे पिता का संबंध तो मेरे से भी अच्छा परमात्मा के साथ था। तो ऐसे बोले कोई सिंपल युक्तियां भी अपनाइए परंतु परमात्मा से लगे रहिए, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक क्रोध की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इनर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो आपका इतना बढ़ जाएगा।